بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، آج قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 14 اور 15 کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری قاسم رضی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، لوگوں کے لیے پتنیوں، سنتانوں، سونے چاندی سے بٹورے ہوئے دھن، اچھے گھوڑوں، مویشیوں تتھا کھیتیوں سے پریم کو اچھا دکھایا گیا ہے۔ ये सब सांसारिक जीवन की नश्वर वस्तुएं हैं और अल्लाह के पास अच्छा प्रतिफल है। हे पैगंबर, कह दीजिए कि मैं तुम्हें इससे अच्छी वस्तुओं की खबर देता हूँ। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए अल्लाह के पास ऐसे बाग हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और वहाँ वे सदैव रहेंगे। उनकी पत्नियाँ होंगी और अल्लाह की प्रसन्नता होगी और अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। आज बुधवार है, बहमन माह की 12, रजब की 10 और फरवरी की 1 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप स्वतंत्रता प्रभात पर विशेष कार्यक्रम सुनेंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति का कहना है कि देश का माहौल खराब करने वालों को जवाब देना होगा। इस्लामी सहयोग संगठन ने यूरोपीय देशों से पवित्र कुरान का अनादर करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। भारत में बजट 7 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। पाकिस्तान पेशावर मस्जिद में हुए धमाके ने कई सवाल पैदा कर दिए। और अब आप मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान के अंदर जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसे जवाबदेह होना होगा। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कल रात ईरानी टेलीविजन चैनल से बात करते हुए स्वतंत्रता प्रभात के आगमन और इमाम खुमैनी के स्वदेश वापसी की सालगिरह पर बधाई दी और कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के संस्थापक, उनका व्यक्तित्व और उनकी स्मृति, उनकी जीवन शैली हम सभी के लिए हमेशा एक आदर्श रहेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि तमाम दबावों और प्रतिबंधों के बावजूद ईरान हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करने में विफल रहने के कारण आज दुश्मन हमारे कार्यों से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हालिया दंगों का एक कारण यह था कि दुश्मन राजनेताओं के कार्यों से अपने प्रतिबंधों को निष्प्रभावी होते देखा और प्रतिबंधों के बावजूद हमारे तेल निर्यात में वृद्धि हुई है। उनका कहना था कि देश ने उत्पादन पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद 5% की वृद्धि का अनुभव किया है और लगभग 1 मिलियन नौकरियां पैदा हुई हैं। राष्ट्रपति ने यह बयान करते हुए कि यूरोपीय लोगों को अपने लिए ऐसा ही करना चाहिए और दोहरे मानकों को त्यागना चाहिए, कहा कि ईरान के अंदर जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसे जवाब देना होगा।
इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर गनानी ने अमरीकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के ईरान विरोधी बयान का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि बड़ी हास्यास्पद बात है कि अपराधी कानूनों को रौंदने वाले इस समय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के ध्वजवाहक बन गए हैं। ناصر کنانی نے ٹویٹ کیا کہ دنیا میں پہلے پرمانو حملہور دیش کے ودیش منتری اور جعلی و قابض زائنی شاسن کے پردھان منتری ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ایران کے پرمانو خطرے پر اپدیش دیتے ہیں۔ ودیش منترالے کے پروکتا کا کہنا تھا کہ یہ بہت حساسپد ہے کہ زائنی شاسن کے پردھان منتری جن کے پاس پرمانو ہتھیاروں کا بھنڈار ہے ایران کو چیتاونی دیتے ہیں، جو این پی ٹی کا ممبر ہے اور انتراشٹریہ پرمانو ارجا ایجنسی کے ساتھ بھرپور سہیوگ کر رہا ہے۔ ایران کے ناگرک ادیشوں سے چل رہے پرمانو کارکرم کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل آئے دن کوئی نہ کوئی بےتکا بیان دیتے ہیں، جبکہ ایران ناگرک لکشوں کے تحت پرمانو گتیویدھیاں کر رہا ہے اور این پی ٹی کے نیموں کا پوری ذمہ داری سے پالن کرتا ہے۔
اسلامی سہیوگ سنگٹھن نے یورپی سرکاروں سے مانگ کی ہے کہ وہ قرآن کا اپمان کرنے والے تتوں کے خلاف کارروائی کریں۔ سویڈن، ہالینڈ، ڈنمارک میں قرآن شریف کو جلائے جانے کی شرمناک گھٹناؤں کے بعد اسلامی سہیوگ سنگٹھن نے، جس میں 57 دیش شامل ہیں، جدہ میں آپات بیٹھک کی، جس میں IIC کے مہا سچیو حسین طہا نے کہا کہ یورپ میں چرمپنتھی دکشنوادی تتوں کی بھڑکاؤ حرکت سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے اور یورپی سرکاروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسماجک تتوں کے خلاف کٹھور کارروائی کریں، وشیش کر اس لیے بھی کہ اس پرکار کی گھٹنائیں بار بار ہو رہی ہیں۔ حسین طہا نے دوسرے سمبندھت سنگٹھنوں اور سنستھاؤں سے بھی کہا ہے کہ بھوشیہ میں اس پرکار کی گھٹنائیں دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان گھٹناؤں کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اسلامو فوبیا کے سندرب میں کی عام گھٹنائیں نہیں ہیں، یہ دنیا کے 160 کروڑ مسلمانوں کی بھاوناؤں کا اپمان ہے۔
حملہور سعودی گٹھ بندھن نے یمن میں بار بار سنگھرش ورام کا الگھن کیا ہے اور الحدیدہ پران سہت وبھن کھیتروں میں کئی حملے کیے ہیں۔ المسیرہ کی رپورٹ کے انوسار حملہور سعودی گٹھ بندھن نے پشچمی پرانت الحدیدہ میں 72 بار سنگھرش ورام کا الگھن کیا ہے اور ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے وبھن کھیتروں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے یمن کے رکشا سلاحکار جلال الرویشان نے کہا تھا کہ نہ تو شانتی اور نہ ہی یدھ کی استھتی بے حد خطرناک ہے۔ یمن کی سروچ راجنیتک پریشد کے پرمخ مہدی المشت نے بھی کئی بار چیتاونی دی ہے کہ سعودی گٹھ بندھن کے لگاتار حملوں کے کارن سنگھرش ورام لگ بھگ سماپت ہو گیا ہے۔ سنا اور ریاض کے پرتندھی منڈلوں کے بیچ سویڈن میں ہوئے سمجھوتے کے انوسار پشچمی پرانت الحدیدہ میں یدھ ورام پر سہمتی بنی اور 18 دسمبر 2018 کو اس کا کاریانوین شروع ہوا، لیکن کچھ گھنٹوں بعد حملہور سعودی گٹھ بندھن نے یدھ ورام توڑ دیا اور سنگھرش ورام کا الگھن شروع ہو گیا۔
بھارت کے وت ورش 2023-24 کے لیے آخری بار سرکار کا پورن بجٹ پیش کرتے ہوئے وت منتری نرملا سیتارمن نے اعلان کیا کہ اب سے نئی کر ویوستھا لاگو کی جائے گی، جس میں آئے کر چھوٹ کی سیما بڑھا کر 7 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ موجودہ ویوستھا میں 5 لاکھ روپے تک کی وارشک آئے پر ناگرک کوئی آئے کر نہیں دیتے ہیں۔ سیتارمن 5ویں بار بجٹ پیش کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی آئے کر سلیب کی سنکھیا 6 سے گھٹا کر 5 کی گئی، جس میں 3 سے 6 لاکھ روپے پر 5%، 6 سے 9 لاکھ روپے پر 10%، 9 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے پر 15%، اور 12 لاکھ روپے سے 15 لاکھ روپے تک 20%، اور 15 لاکھ روپے سے ادھک کی آئے پر 30% کر دینا ہوگا۔
بھارت کی کیندر سرکار نے دلی ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ پی ایم کیئرس فنڈ سمویدھان یا سنسدیہ قانون کے تحت نہیں بنایا گیا، بلکہ اسے ایک سوتنتر پبلک دھرمارتھ ٹرسٹ کے طور پر ثابت کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے سمکش پرستوت ایک وسترت حلف نامے میں کیندر نے کہا کہ ٹرسٹ کے کام کاج میں کسی بھی طرح سے کیندر سرکار یا کسی بھی راجیہ سرکار کا پرتیکش یا اپرتیکش روپ سے کوئی نینترن نہیں ہے۔ پراسنگک طور پر یہ بھی کہا گیا کہ پی ایم کیئرس فنڈ میں سوچھائک دان شامل ہے اور اسے کوئی سرکاری سہایتا پراپت نہیں ہوتی ہے، اور یہ سرکار کے بجٹی سروتوں یا سارجنک کھیتر کے اپکرموں کی بیلنس شیٹ سے ملنے والے یوگدان کو سویکار نہیں کرتا ہے۔ حلفنامے میں کہا گیا ہے کہ پی ایم کیئرس سوچنا کے ادھیکار ادھینیم میں پی ایم کیئرس ایک سارجنک پرادھیکرن نہیں ہے، اس لیے ٹرسٹ پر RTI ادھینیم کے پراودھانوں کو لاگو نہیں کیا جا سکتا۔
بھارت اور امریکہ انت رکشا اور کمپیوٹنگ پرودیوگیکی ساجھا کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں، جس کے انترگت جنرل الیکٹرک کمپنی جیٹ انجنوں کا سمبھاوت سنیوکت اتپادن بھی شامل ہے۔ अमरीकी मीडिया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार योजना का विवरण जिसे यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के रूप में जाना जाता है मंगलवार को जारी किया गया, जहां वॉशिंगटन के साझेदार देशों के साथ सैन्य प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला लिंक को मजबूत करने के व्यापक एजेंडे को दिखाया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलविन ने एक ब्रीफिंग में कहा कि यह योजना केवल मॉस्को या बीजिंग द्वारा पेश भू राजनीतिक चुनौतियों से संचालित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चीन की आक्रामक सैन्य और आर्थिक गतिविधियों का दिल्ली में सोच पर गहरा प्रभाव और दुनिया भर की अन्य राजधानियों पर पड़ा है।
पाकिस्तान के पेशावर शहर में रेड जोन इलाके में स्थित मस्जिद के भीतर हुए आतंकी हमले ने बड़े महत्वपूर्ण सवालों को जन्म दिया है। पेशावर के मस्जिद में नमाज के समय होने वाले धमाके में मरने वालों की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी है और हालिया कुछ महीनों में इस सूबे में चरमपंथियों ने कई हमले किए हैं और पेशावर हमले सहित इन सारे हमलों में मुख्य रूप से पुलिसकर्मियों और अफसरों को निशाना बनाया गया है। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में जायजा लिया कि 2014 में जब पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान से लगे कबायली इलाकों में सैनिक ऑपरेशन किया तो प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के बहुत सारे आतंकी मारे गए और अधिकतर सीमा पार करके अफगानिस्तान चले गए। अशरफ गनी की पूर्व सरकार के दौर में अफगानिस्तान में भी तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के भीतर इस संगठन का नेटवर्क कमजोर हुआ, मगर 2021 तालिबान की सरकार आने के बाद टीटीपी दोबारा सक्रिय हो गई। इस समय आतंकवाद की ताजा लहर को लेकर टीकाकार कहते हैं कि सरकार को यह तय करना होगा कि ये वो केवल राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है या इस मसले को हल करना चाहती है। अगर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की गई तो हमले भी होंगे और हालात खराब होंगे, लेकिन अगर आतंकवाद का मुकाबला करना है तो सरकार को स्टिक एंड कैरेट की नीति पर चलना होगा।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीनी और इसराइली अधिकारियों से मुलाकातें की, जिनके दौरान उनकी कोशिश तनाव और टकराव को कम करने पर केंद्रित रही, क्योंकि इस समय जहां एक तरफ इसराइल की भड़काऊ और दमनात्मक कार्रवाइयां तेज हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध ने नई मिसाल कायम की है। मंगलवार की शाम ब्लिंकन रामल्ला में फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास से मिले, इससे पहले वो इसराइली अधिकारियों से मुलाकातें कर चुके हैं।
रूस ने यूक्रेन के एक अहम इलाके पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन यूक्रेनी सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार रूस ने यूक्रेनी शहर बाखमूत के उत्तरी बाहरी इलाके में गांव पर नियंत्रण का दावा किया है, लेकिन इस दावे पर यूक्रेनी सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
यूक्रेन युद्ध की गंभीरता और घातकता बढ़ती जा रही है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूर तक मार करने वाले मिसाइल देने की योजना बना रहा है, और यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शेमिगल ने कहा है कि शुक्रवार को कीव में यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ शिखर बैठक होगी।
IMF ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन एकमात्र विकसित देश होगा जिसकी अर्थव्यवस्था इस वर्ष बढ़ने के बजाय सिकुड़ जाएगी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार IMF ने कहा है कि 2023 में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था 0.6% तक सिकुड़ जाएगी और ब्रिटेन की विकास दर में 3% और GDP में 6% की गिरावट आने की उम्मीद है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा। दोस्तों राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर हाजिर है कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। इसराइल से फरार करने वाले यहूदियों की संख्या में वृद्धि, पोप फ्रांसिस की कांगो यात्रा और भारत का वार्षिक बजट, ये हैं हमारी आज की चर्चा के विषय। अवैध ज़ायोनी शासन की स्थापना के समय से ही वहां से यहूदियों के उल्टे पलायन का क्रम अब भी जारी है। विस्तार से बता रहे हैं अहमद अब्बास।
इसराइल में जब दुनिया के अन्य देशों से यहूदी शरणार्थी लाए जाते हैं तो इसराइली मीडिया इसका खूब ढिंढोरा पीटता है और पूरी घटना को खूब प्रचारित किया जाता है। एयरपोर्ट पर इसराइली ध्वज अपने शरीर पर लपेटे विमान की सीढ़ियों से उतरते यहूदी दिखाए जाते हैं। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से ये दृश्य इसराइली मीडिया पर बार बार नजर आए। इसराइल ने ऐलान कर रखा है कि यूक्रेन या रूस से आने वाले सभी यहूदियों का स्वागत किया जाएगा। इन दोनों ही देशों में यहूदियों की एक संख्या बसती है। सोवियत संघ टूटा था तो उस समय लाखों की संख्या में यहूदी इसराइल पहुंचे थे। वर्ष 2022 की समाप्ति के समय ज़ायोनी एजेंसी की तरफ से इस बात का जश्न मनाया गया कि अच्छी संख्या में यहूदियों ने इसराइल पलायन किया। इस बार लगभग 70,000 यहूदी रूस और यूक्रेन से इसराइल पहुंचे, मगर आंकड़ों के अनुसार 2 लाख से अधिक यहूदी यूक्रेन में और 5 लाख से अधिक यहूदी रूस में है जो इसराइल पलायन करने के लिए तैयार नहीं। इससे इसराइली अधिकारियों की चिंता बढ़ी है, मगर इसराइल के अधिकारियों के लिए इससे बड़ी चिंता का विषय ये है कि इसराइल में बसने वाले यहूदी अब वहां से उल्टा पलायन कर रहे हैं। यहां तक कि बहुत से यहूदी लौटकर यूक्रेन भी जा रहे हैं जहां इस समय युद्ध चल रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 2 महीने के भीतर 1800 से अधिक यहूदी जो रूस से इसराइल पहुंचे थे दोबारा रूस लौट गए। इसराइल में बसने वाले यहूदी यूरोपीय देशों की नागरिकता की लगातार कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस की नागरिकता के लिए इसराइल में बसने वाले यहूदियों के आवेदन सबसे ज्यादा हैं। फ्रांस के अलावा पुर्तगाल, पोलैंड और जर्मनी वे देश हैं जहां की नागरिकता हासिल करने के लिए इसराइल में बसने वाले यहूदी कोशिश करते हैं। जब इसराइल की स्थापना हुई और यहूदियों को अन्य देशों से लाकर फिलिस्तीन में बसाया जाने लगा तो उसी समय से उल्टा पलायन भी शुरू हो गया था। 1948 से 1950 के बीच 10% से अधिक यहूदी इसराइल छोड़कर चले गए, जिसके बाद इसराइल ने ज़ायोनियों के लिए विदेशों का वीजा लेने संबंधी नियम काफी कड़े कर दिए। 1958 आने तक 1 लाख से अधिक यहूदी इसराइल छोड़कर गए। ये संख्या 1967 में बढ़कर 1,80,000 से अधिक हो गई। 1970 के दशक में तो ज़ायोनी एजेंसी को अमेरिका में अपने 3 केंद्र बंद करने पड़े जहां यहूदियों को इसराइल लाने के लिए तैयार किया जाता था और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थीं। वर्ष 2017 में वेनेजुएला की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई तो राजधानी काराकास में रहने वाली यहूदी महिला मार्लिन एनशियारिको बंदायान ने अमेरिका जाने का इरादा किया जहां उनके रिश्तेदार रहते थे, मगर ट्रंप सरकार की कठोर इमिग्रेशन नीतियों के वजह से अमेरिका जाना कठिन हुआ तो उन्होंने इसराइल जाकर बसने का इरादा कर लिया। वहां उनके साथ रूसी मूल की यहूदी महिला ने धोखाधड़ी की और यहूदी पुरुष ने वादा करने के बावजूद उनसे विवाह नहीं किया क्योंकि वे लैटिन अमेरिकी मूल की थीं। नतीजे में उन्हें इसराइल से वापस जाकर मैक्सिको सिटी में बसना पड़ा। 2020 तक इसराइल से उल्टा पलायन करने वालों की संख्या 8 लाख के करीब पहुंच गई। इसराइली नेताओं को अब हालिया इंतफाजा आंदोलन की लहर तेज होने के बाद डर है कि इसराइल से फरार होने वाले यहूदियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी।
पोप फ्रांसिस कहते हैं कि कांगो ही नहीं पूरे अफ्रीका महाद्वीप का दोहन अब बंद होना चाहिए। इस बारे में एक समीक्षा लेकर हाजिर है सैयद मीसम।
मंगलवार को कांगो की राजधानी किनशासा की अपनी यात्रा के पहले दिन कैथोलिक ईसाइयों के धार्मिक नेता पोप फ्रांसिस ने अफ्रीका और इस देश के आर्थिक उपनिवेशीकरण की कड़ी निंदा की। किनशासा स्थित राष्ट्रपति भवन में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अधिकारियों को संबोधित करते हुए पोप ने कहा, कांगो और अफ्रीका का दोहन अब बंद करना होगा। افریقہ کا دم گھوٹنا بند کرنا ہوگا. یہاں اب کوئی ایسی کھدان نہیں ہے جس کا دوہن نہ کیا گیا ہو اور ایسا کوئی دیش نہیں ہے جسے لوٹا نہیں گیا ہو. پوپ فرانسس نے پچھلی کئی شتابدیوں سے پشچمی اپنیویشوادیوں دوارا افریقہ کے ویاپک اپنیویشیکرن کا الیکھ کیا جس کے وناشکاری پریڑام سوتنتا پراپت کرنے کے دشکوں کے بعد بھی اسپشٹ روپ سے دیکھے جا سکتے ہیں. یورپی دیشوں وشیش روپ سے برٹین, فرانس, بیلجیم, اٹلی اور جرمنی نے کئی شتابدیوں تک افریقی دیشوں پر قبضہ جمائے رکھا اور وہاں کے لوگوں کی ہتیائی کی اور ان کا شوشن کیا. یورپی لوگوں نے استھانی لوگوں کے ساتھ کرور ویوہار کیا, ان کا ویاپک دمن کیا اور انہیں غلام بنا کر دنیا بھر کے بازاروں میں بیچا. اپنیویش وادیوں نے کھنیجوں اور سنسادھنوں کو لوٹا اور امانوی اپرادھ کیے. کروڑوں افریقی مول نواسیوں کو امریکہ, لیٹن امریکہ اور یورپی دیشوں میں داس بنا کر بہت ہی کٹھن پرستھتیوں میں رکھا گیا اور ان پر اتیاچار کیے گئے. ان کی خون پسینے کی محنت سے یورپی اپنیویش وادیوں نے اربوں ڈالر کمائے. افریقی دھن کو یورپی استھانانترت کیا گیا. حالانکہ دوتیہ وشو یدھ کے بعد افریقی دیش سوتنتر ہو گئے لیکن پشچمی دیشوں نے ان دیشوں کی راجنیتک, آرتھک اور یہاں تک کی سینیہ سرنچناؤں کو پربھاوت کر کے اس مہادیپ میں اپنے راجنیتک اور آرتھک پربھاؤ کو بنائے رکھنے کا پریاس کیا ہے. روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتین اس سندرب میں کہتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پشچمی دیش افریقی سرکاروں پر دباؤ بناتے ہیں, انہیں دھمکاتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں. اس طرح سے وہ اپنے پچھلے اپنیویشوں پر اپنا پربھاؤ اور پربھتو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ حالیہ ورشوں میں دنیا میں ہونے والے مولبھوت پریورتنوں اور ابھرتی ہوئی آرتھک شکتیوں کے ادے کے ساتھ افریقی دیشوں کے ساتھ ویاپار بازار میں پشچمی دیشوں کی حصہ داری کم ہوئی ہے اور اس نئی پرستھتیوں میں دنیا کی ابھرتی ارتھویوستھاؤں جیسے چین, بھارت اور برازیل کی بھاگیداری بڑھی ہے. افریقی دیش ویاوسائک ہوئے ہیں. روسی ودیش منتری سرگئی لاروف کہتے ہیں, امریکہ اور یورپی دیش جو افریقی دیشوں کے ساتھ روس کے سہیوگ کی سماپتی کی مانگ کر رہے ہیں, واسطو میں افریقہ پر پشچمی دیشوں کی اوپنیویشک نربھرتا کو بحال کرنے کی مانگ کر رہے ہیں. ورتمان استھتی میں افریقہ دھیرے دھیرے ویشوک سمیکرنوں میں اپنی بھومیکا بڑھا رہا ہے. پشچمی اور ابھرتی ہوئی ارتھویوستھاؤں نے اس کانٹیننٹ میں اپنی اپستھتی اور پربھاؤ بڑھانے کے لیے اپنی پرتسپردھا تیز کر دی ہے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کاریکرم راجنیتک چرچا.
اور شوتاؤ, اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا. بھارت کے وارشک بجٹ پر وبھن آیاموں سے طرح طرح کی پرتکریائیں آئی ہیں. نئی دلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ.
بھارت کی کیندر سرکار نے دیش کا عام بجٹ 2023-24 پیش کر دیا ہے. کیندری وت منتری نرملا سیتا رمن نے لگاتار پانچویں بار بجٹ پیش کیا. اگلے ورش ہونے والے لوک سبھا چناؤں سے پہلے یہ سرکار کا انتم پورن بجٹ ہے. اس بجٹ پر اگلے لوک سبھا چناؤ اور کچھ راجیہ سبھا چناؤں کے پربھاؤ دکھائی دے رہے ہیں اور لوگوں کو کچھ راحت دینے کا پریاس بھی کیا گیا ہے. اس بجٹ میں ٹیکس سلیب میں بدلاؤ بھی کیا گیا ہے. راشٹرپتی دروپدی مرمو کی منظوری کے بعد پردھان منتری نریندر مودی کی ادھیکشتا میں منتری منڈل کی بیٹھک ہوئی, جس کے بعد وارشک بجٹ کو سنسد میں پیش کر دیا گیا. 7 لاکھ روپے کی وارشک آئے پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. اس بجٹ میں مہیلاؤں اور ورشٹھ ناگرکوں کے ہیتوں پر بھی دھیان دیا گیا ہے. اس وارشک بجٹ سے روزمرہ کی کچھ وستوئیں سستی ہوگی اور کچھ مہنگی ہو جائیں گی. संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। उनके अनुसार इस बजट से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। केंद्र सरकार के इस वार्षिक बजट पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने जहां इस बजट को आम जनता के हित में बताया है, वहीं विपक्षी दलों ने इस बजट की आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ये बजट गांव, गरीब और किसान का बजट है और ये मजबूत नींव का निर्माण करेगा। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़े वर्गों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्गों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट में गरीबों और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि इस बजट में किसानों और रेलवे के लिए कुछ नहीं है और बिहार की उपेक्षा की गई है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि ये बजट देश की वास्तविक भावना को संबोधित नहीं कर रहा है, जो कि महंगाई और बेरोजगारी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है और ये बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार का दावा है कि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है, लेकिन विपक्षी दलों का दावा है कि देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, जिसकी तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में दिखाई देती है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनीति चर्चा और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है स्वतंत्रता प्रभात पर विशेष कार्यक्रम।
स्वतंत्रता प्रभात।
दोस्तों, इस्लामी क्रांति की सफलता की 44वीं वर्षगांठ पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित है रविश जैदी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
बाईस बहमन वर्ष 1357 हिजरी शमसी बराबर 11 फरवरी सन 1979 संसार की घटनाओं के इतिहास के कैलेंडर का एक बड़ा अहम और निर्णायक दिन है। इसी दिन शिया मुसलमानों के वरिष्ठ संघर्षकर्ता धर्मगुरु इमाम खुमैनी के नेतृत्व में ईरान की इस्लामी क्रांति सफल हुई थी।
स्वर्गीय इमाम खुमैनी ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक हैं। उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पूर्व तानाशाही शासन ने 1964 में 14 साल के लिए देश से निष्कासित कर दिया था। 1964 में जब इमाम खुमैनी को देश से निकाला गया तो पहले वे तुर्की की राजधानी अंकारा गए और उसके बाद बोरसा शहर चले गए। अगले साल वे वहां से इराक के पवित्र शहर नजफ स्थानांतरित हो गए। इराकी सरकार पर पहलवी तानाशाही शासन के दबाव के बाद स्वर्गीय इमाम खुमैनी को फ्रांस जाना पड़ा। इमाम खुमैनी को जब ईरान से तुर्की निष्कासित किया जा रहा था तो शाह और अमरीका ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन वे विजयी होकर ईरान लौटेंगे और तानाशाही शासन को उखाड़ फेंकेंगे।
ईरान की इस्लामिक क्रांति इस दृष्टि से दुनिया की अहम घटनाओं के इतिहास में बेजोड़ है। इसका प्रभाव केवल एक अत्याचारी तानाशाही सरकार के पतन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस्लामिक क्रांति ने पूरे पश्चिमी एशिया और पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इसी वजह से इस्लामिक क्रांति की समीक्षा दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियों के साथ की जाती है। वास्तव में इस्लामिक क्रांति एक तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन थी। इसके साथ ही वो साम्राज्यवाद विरोधी भी थी। यही कारण है कि चार दशक बीत जाने के बावजूद ये निरंतर आगे बढ़ रही है और वर्चस्ववादी शक्तियों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखे हुए है।
दोस्तों, इस महान आंदोलन के राजनीतिक प्रभावों को उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्रों सहित मुस्लिम राष्ट्रों की मांगों में देखा जा सकता है। यही कारण है कि क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों में पश्चिम की मूल वरीयता क्षेत्र में अपने प्रभाव को सुरक्षित रखने के लिए मध्यपूर एवं उत्तरी अफ्रीकी भूराजनीति का प्रारूप तैयार करना है। साम्राज्यवाद ने इस साजिश के लिए 18वीं शताब्दी के अंत से 19वीं शताब्दी के मध्य तक विभिन्न प्रकारों से पृष्ठभूमि तैयार की। उदाहरण स्वरूप 1830 में फ्रांस द्वारा अल्जीरिया पर अतिक्रमण, 1881 में टूनेशिया पर अतिक्रमण, 1882 में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण और उसका अतिक्रमण, मोरक्को पर फ्रांस का अतिक्रमण और 1912 में इटली द्वारा लीबिया पर अतिक्रमण। वास्तव में उत्तरी अफ्रीकी देश पुराने समय से ही क्षेत्र में साम्राज्यवादियों की उपस्थिति के कारण यूरोप की भूराजनीति का केंद्र रहे हैं। जिस तरह से बाद के वर्षों में अरब देश, विशेषकर तेल से समृद्ध पश्चिमी एशिया के देश अमेरिका एवं पश्चिम के वर्चस्व के केंद्र में परिवर्तित हो गए ताकि विश्व के ऊर्जा एवं तेल के भंडारों पर कब्जा जमा सकें।
इतिहास साक्षी है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने उस्मानी साम्राज्य के काल से ही इस्लामी देशों को विभाजित करना शुरू कर दिया और उस्मानी साम्राज्यवाद से स्वतंत्र हुए अरब देशों पर व्यापक वर्चस्व एवं नए मध्य पूर्व में अपने सामरिक उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखीं। साम्राज्यवाद की इन गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में सन 1948 में फिलिस्तीनी अवैध अधिकृत इलाकों में ज़ायोनी शासन की स्थापना की गई।
इस प्रकार ईरान की इस्लामी क्रांति ने निष्क्रिय एवं सोए हुए इस्लामी राष्ट्रों को जगाया। यह एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन है कि जिसने न्याय प्रेमी ईरानी राष्ट्र की इस्लामी क्रांति से प्रेरित होकर वर्षों से पीड़ित राष्ट्रों को कि जो परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन के लिए प्रेरित किया ताकि वे क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के सामने चुनौती पेश कर सकें और क्षेत्र के बुनियादी समीकरणों में बड़ा उलटफेर कर सकें।
इस्लामिक क्रांति ने वर्चस्वादी शक्तियों द्वारा पिछली कुछ शताब्दियों से हालिया वर्षों तक क्षेत्रीय राष्ट्रों पर थोपी गई अत्याचारपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण नीतियों को निष्क्रिय कर दिया और क्षेत्रीय इतिहास में एक नया अध्याय खोल दिया। आज भी इस्लामिक क्रांति के प्रभाव के कारण यह आंदोलन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो इस क्रांतिकारी आंदोलन ने पहला चरण पार कर लिया है और क्षेत्र में शक्ति के समीकरणों को परिवर्तित कर दिया है।
दोस्तों, इस्लामी क्रांति ने जन आंदोलन द्वारा इस्लामी जागरूकता उत्पन्न करने के अतिरिक्त महान सामाजिक आंदोलन उत्पन्न करने में भी भूमिका निभाई है। दूसरे शब्दों में ईरान की इस्लामी क्रांति की न्याय प्रेमी एवं साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा उत्तरी अफ्रीका एवं पश्चिमी एशिया में इस्लामी जागृति आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बनी और क्षेत्रीय मुसलमानों के लिए इस्लामी पहचान को पुनर्जीवित करने एवं सम्मान की सुरक्षा करने के लिए भूमि प्रशस्त की।
इस्लामी क्रांति ने मुसलमानों को धर्म की ओर वापस लौटने के लिए प्रेरित किया और सामाजिक परिवर्तनों एवं शासन व्यवस्था की स्थापना में इस्लाम की प्रतिभा को सिद्ध करते हुए स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस्लामी जागृति को प्रबल किया। क्रांति की इस घटना ने एक प्रकार से इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित इस्लामी समाज का प्रचार प्रसार किया। एक कदम इस बात का साक्षी है कि ईरान की इस्लामी क्रांति ने अमेरिका एवं ज़ायनी शासन से मुकाबले के लिए पीड़ित राष्ट्रों में जान फूंक दी। ये समस्त उद्देश्य इस्लामी क्रांति की महत्वाकांक्षा एवं सिद्धांत हैं तथा इस्लामी क्रांति उनकी प्राप्ति चाहती है। यही कारण है कि अमेरिका और ज़ायनी शासन इस्लामी क्रांति को अपनी अतिक्रमणकारी नीतियों के लिए खतरा मानते हैं और उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस्लामी क्रांति अपने विकास के मार्ग पर प्रतिदिन विश्व समुदाय के निकट अधिक महत्व प्राप्त करती जा रही है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पिछले 4 दशकों से भी अधिक से क्षेत्रीय राष्ट्रों ने ईरान की इस्लामी क्रांति से मूल्यवान अनुभव प्राप्त किए हैं और इस वास्तविकता को समझ लिया है कि क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाली शक्तियों का उद्देश्य यह है कि वह ऐसे तत्वों को सत्ता सौंपें कि जो अमेरिका एवं पश्चिम के लिए प्रतिबद्ध हों। विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों की दृष्टि में इस्लामी क्रांति इस्लामी जागृति विचारधारा के रूप में नए वर्ग के लिए सही इस्लामी विचारधारा को पुनर्जीवित कर सकी और उसने लोकतंत्र के साथ इस्लाम के सामंजस्य का उल्लेख करके मुसलमानों को पुनः इस्लामी पहचान दी तथा उनमें सम्मान एवं आत्मविश्वास उत्पन्न किया।
निस्संदेह ये महान आंदोलन संवेदनशील एवं ऐतिहासिक काल में उत्पन्न हुआ है और अमेरिका भरपूर प्रयास कर रहा है कि वो क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को आतंकवाद से मुकाबले एवं विश्व शांति के बहाने उनके मूल लक्ष्य से भटका दे। अमेरिका ने संदर्भ में क्षेत्रीय देशों में सत्ता परिवर्तन और लोकतंत्र की स्थापना के बहाने इस स्ट्रेटेजी को पूरा करने की साजिश रची।
अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को 1978 में 7 औद्योगिक देशों के शिखर सम्मेलन से पहले तक इस बात की आशा नहीं थी कि ईरान की शाही सरकार गिर सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इस्लामी क्रांति की सफलता से एक साल पहले 1978 में तेहरान का दौरा किया था और ईरानी शाह को जनता का विश्वस्त और लोकप्रिय शासक और इसी तरह ईरान को सुरक्षा और स्थिरता का टापू बताया था। ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री डेविड ओवन ने भी एक बयान जारी करके ईरान की जनता की क्रांति के मुकाबले में अपने देश के स्पष्ट रुख की घोषणा करते हुए शाह के समर्थन पर बल दिया था। ये देश दावा करते हैं कि वे साम्यवाद की मुकाबले में शाह का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जनवरी 1978 से 11 फरवरी 1979 तक के सामाजिक घटनाक्रमों ने ये दिखा दिया कि ईरान की तानाशाही सरकार के समर्थकों के समीकरण कितने गलत थे।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के अनुसार ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिका की क्षेत्रीय नीति की 2 भुजाओं में से एक था। रिचर्ड निक्सन की थ्योरी के अनुसार फारस की खाड़ी में ईरान की स्थिति बड़ी निर्णायक है क्योंकि उसके पास अपार स्रोत और बड़ा क्षेत्रफल है। उसकी भौगोलिक स्थिति बड़ी अहम है, उसमें स्थिरता पाई जाती है और उसकी सैन्य क्षमता भी जबरदस्त है, इसीलिए वो क्षेत्रीय थानेदार की भूमिका निभा सकता है। इस विचार के आधार पर ईरान और सऊदी अरब को फारस की खाड़ी में अमेरिका के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी। इन दोनों में भी ईरान की प्रमुख स्थिति थी और सऊदी अरब को अधिकतर सुरक्षा कार्यक्रमों के आर्थिक समर्थन की जिम्मेदारी दी गई थी।
लेकिन ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरानी जनता ने हजारों अमरीकी सैन्य सलाहकारों को देश से निकाल बाहर किया और आज ईरानी राष्ट्र अमरीकियों को पूरे क्षेत्र से बाहर निकालने और क्षेत्र में उसकी सैन्य छावनियों को बंद कराने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये कोशिश सफल होती भी दिखाई दे रही है। इराक के बाद अफगानिस्तान से भी अमेरिका को अपमानित होकर भागना पड़ा है। क्षेत्रीय घटनाक्रमों और क्षेत्र में इस्लामी प्रतिरोधी मोर्चे की मजबूत पोजीशन को देखकर यह कहा जा सकता है कि अब इस क्षेत्र में अमरीकियों की उपस्थिति ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रह सकती है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
आजकल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेरदादी और सैयद निसम का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई अपने भाषणों में कई बार नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते रहे हैं। उनका कहना है कि इसे अपनाना चाहिए। वे कहते हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नए रोजगार का सृजन होगा और प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था को भी इसी से बल मिलेगा।
वर्तमान युग को नॉलेज एरा का भी नाम दिया जा रहा है। इस काल के दौरान नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस शताब्दी में जब डिजिटल रूप में देश आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था का होना किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। जो भी देश इस दिशा में जितनी जल्दी कदम उठाएगा वो उतनी ही जल्दी स्वयं को विश्व पटल पर आगे रख सकता है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि वर्तमान समय में अर्थव्यवस्थाएं ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही हैं। इस आधुनिक प्रकार की अर्थव्यवस्था के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति अर्जित की जा सकती है जिससे किसी देश और उसके नागरिकों सबका लाभ होगा।
देशों के लिए आर्थिक विकास तक पहुंचने का एक मार्ग नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन भी है। आज के जमाने में नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की बात हर ओर सुनाई दे रही है। 1990 के दशक के अंत में विश्व बैंक तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने इस विषय को पेश किया था। आर्थिक विकास में विज्ञान की भूमिका को अगर देखा जाए तो नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन कोई नया विषय नहीं है। विगत के आर्थिक सिद्धांतों में आर्थिक विकास में ज्ञान और तकनीक की भूमिका प्रभावी रही है। अतीत की तुलना में विज्ञान और तकनीक ने आर्थिक विकास को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया है, इसीलिए इसका महत्व पहले से अधिक बढ़ा है।
यही कारण है कि नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था में सरकारों को तकनीक, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस संबंध में सरकारों की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि सरकारों, उद्योगों और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को संस्थागत बनाया जाए। जैसा कि हम पिछले कार्यक्रम में बता चुके हैं कि नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा सामान्यतः नवीन और आधुनिक उत्पादन को लेकर है। वे अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी सफलता के लिए आधुनिक उत्पादन को पेश करती हैं, वे विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो जाती हैं। इसी प्रकार से वे कंपनियां जिनका वित्तीय प्रदर्शन अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में महत्वपूर्ण रहा है, उनकी सफलता का रहस्य ये था कि उन्होंने उत्पादन के हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था का प्रयोग किया।
औद्योगिक विकास तक पहुंचने से पहले विश्व ने कृषि की अर्थव्यवस्था को अपनाया और उसके बाद धीरे धीरे वो औद्योगिक आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ। बहुत बाद में नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। वर्तमान समय में नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था को ही आधार बनाकर विकास किया जा रहा है, जिसे पूरी दुनिया में अच्छी पहचान हासिल हुई है। 1990 के अंतिम दशक से आरंभ होने वाले आर्थिक विकास में तकनीक पर अधिक ध्यान दिया गया, जिसमें श्रम बल और पूंजी दोनों को दृष्टिगत रखा जाता है। नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञों को मूल पूंजी के रूप में देखा जाता है। ऐसे में अधिक से अधिक विशेषज्ञों के माध्यम से अधिक विकास किया जा सकता है।
ब्रिटेन या इंग्लैंड वो पहला देश था जिसने 1998 में पहली बार नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ब्रिटेन के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की ओर से घोषणा की गई थी कि भविष्य में हमारी प्रतिस्पर्धा ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था से होगी। 1998 में विश्व बैंक ने वैश्विक विकास की अपनी रिपोर्ट में विज्ञान और तकनीक को विकास का मुद्दा बताया था। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि विकास से संबंधित समस्याओं में अब नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक विशेष बात जो विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कही गई थी वो ये थी कि निर्धन देश और वहाँ की जनसंख्या केवल कम पूंजी के कारण अमीर देशों से भिन्न नहीं है, बल्कि उनके बीच की भिन्नता का मुख्य कारण विज्ञान का अभाव है।
इस विषय के महत्व के दृष्टिगत विश्व बैंक ने इसी वर्ष विश्व के विभिन्न देशों की सहायता के लिए विज्ञान को विकास के रूप में पेश किया। इस काम से उसका उद्देश्य देशों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान और तकनीक को महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाए। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में बात को समझाने के लिए एक उदाहरण पेश किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 4 दशक पहले दक्षिणी कोरिया और अफ्रीकी देश घाना की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1 बराबर थी। 90 के दशक के आरंभ में दक्षिणी कोरिया के प्रति व्यक्ति आय घाना की तुलना में लगभग 6 बराबर हो चुकी। कुछ आर्थिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस अंतर का मुख्य कारण दक्षिणी कोरिया द्वारा विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग रहा है। इससे पता चलता है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच एक अंतर तकनीक और विज्ञान का प्रयोग है।
जिन देशों ने नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था के सहारे प्रगति की है उनमें से एक इंडोनेशिया भी है। इंडोनेशिया को दक्षिण पूर्वी एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। जैविक और सांस्कृतिक विविधता के मामले में इंडोनेशिया विश्व के विविध देशों में से एक है। सन 1990 में आर्थिक संकट के बाद इंडोनेशिया ने विश्व में एक विकसित देश और वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपना स्थान बना लिया है। GDP या सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से इंडोनेशिया ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से इंडोनेशिया में आंकड़ा सन 2000 में $3,971 हो गया था।
इस समय इंडोनेशिया की गणना विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होती है, जो गुट G20 का भी सदस्य है। देश से निर्धनता को दूर करने में इंडोनेशिया ने आर्थिक क्षेत्र में कई सफलताएं अर्जित की हैं। इंडोनेशिया ने अपने कर्ज निपटाने और बजट के घाटे को समाप्त करने जैसे उल्लेखनीय काम किए हैं। सन 2010 में इस देश में विदेशी पूंजी निवेश बहुत हुआ था। इस वर्ष वहां पर पूंजी निवेश में 163% की वृद्धि हुई, जो बढ़कर $12.8 अरब हो चुका है। इसके एक दशक के बाद 2019 में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की GDP के साथ विश्व की 16वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।
आर्थिक सुरक्षा स्थिति और स्थायी निर्यात में ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था का विशेष स्थान है, क्योंकि कच्चा माल तो कहीं से भी हासिल किया जा सकता है और न मिलने की सूरत में इसके विभिन्न विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, मध्य पूर्व के देशों में पाए जाने वाले तेल पर भरोसा करते हुए पश्चिमी देश ईरान के तेल पर प्रतिबंधों की बात को आसानी से पेश कर सकते हैं, किंतु जब उत्पादन ज्ञान पर आधारित हो तो ऐसे में उसके लिए विकल्प खोजना कोई सरल काम नहीं होता। इसी प्रकार से जब देशों के अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकट पैदा होते हैं तो ऐसे में सबसे पहले गैर विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
उस समय ज्ञान पर आधारित उत्पादों को सीमित करने का विचार सबसे आखिर में आता है, क्योंकि उनकी आवश्यकता अधिक होती है। यहाँ पर उल्लेखनीय बिंदु यह है कि नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की प्राप्ति के लिए केवल सूचनाएं उपलब्ध करवाना और अनुसंधानों में लग जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनका प्रयोग आर्थिक संसाधनों के उपयोग में बहुत प्रभावी सिद्ध होता है। आर्थिक विकास के आरंभिक आदर्शों में उत्पादन के भौतिक कारकों पर अधिक बल दिया गया है, जबकि विकास के नए मॉडल में ऐसा देखने को नहीं मिलता। वहां पर यह बताया जाता है कि आर्थिक विकास के प्रभावी कारकों में ज्ञान सर्वोपरि है।
विश्व बैंक का मानना है कि नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था के कुछ स्तंभ होते हैं। पहली बात तो यह है कि इनमें एक आर्थिक और संस्थागत ढांचे की आवश्यकता होती है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, दक्षता प्रदान करने आदि के लिए प्रोत्साहित करता रहे। दूसरी बात यह है कि इसके लिए ऐसे शिक्षित वर्ग की आवश्यकता होती है जो विशेषज्ञों का स्वामी हो। तीसरी बात यह है कि ऐसी आधुनिक व्यवस्था जो विज्ञान की प्रगति पर नजर रखे और उससे लाभ उठाने की शैलियों से अवगत करवाए।
चौथी बात यह है कि गतिशील सूचना तंत्र मौजूद हो जो सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायक सिद्ध हो सके। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि ज्ञान पर आधारित आधुनिक अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो आधुनिक समय में देशों के आर्थिक सतत विकास को प्राप्त करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण में परिवर्तित हो चुकी है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें अनुमति दीजिए।
रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और प्रस्तुत आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति का कहना है कि देश का माहौल खराब करने वालों को जवाब देना होगा। इस्लामी सहयोग संगठन ने यूरोपीय देशों से पवित्र कुरान का अनादर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारत में बजट पास हो गया है, 7 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं होगा और पेशावर में मस्जिद पर हुए धमाके ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.